अंशु ब्रो, ये वाला थोड़ा चालू कर दो, अंधेरा लग रहा है। छोटा वाला नहीं निकाले, कलर छोड़ देता है थोड़ा कलर। ठीक, बड़ा खराब कर रहा है। इंग्लिश बुक
हरे कृष्ण
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8, अध्याय शीर्षक भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। श्लोक संख्या 19 बोर्ड पे है, 18 में परपट नहीं है तो मैं 18 पढ़ लेता हूँ पहले। यह एतस्मिन् महाभागा प्री 19 बोर्ड पे है। यह एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवन्ति एतान् विष्णुपक्षान् इवासुरः। अब आएंगे 19 में। तस्मानंदात्मजोयम् ते, तस्मानंदात्मजोयम् ते नारायण समो गुणैः, नारायण समो गुणैः। श्रिय कीर्तानुभावेन, श्रिय कीर्त्यानुभावेन गोपयस्व समाहितः, गोपयस्व समाहितः तस्मानन्दात्मजोयम् ते नारायण समगुणैः। श्रियकीर्त्यानुभावेन गोपयस्व समाहितः।
माता जी शब्दार्थ 18 का मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, फिर शब्दार्थ पर जाएंगे। देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुर गण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतएव वे कंस के संगियों यथा असुरों या आंतरिक क्षत्रियों शत्रुओं तथा इंद्रियों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। तस्मात् इसलिए नंद हे नंद महाराज आत्मजह आपका पुत्र हयम यह ते तुम्हारा नारायण समह नारायण के सदृश जो दिव्य गुण वाला है गुण ही गुणों से श्रिया ऐश्वर्य से कीर्त्या अपने नाम और यश से अनुभावेना तथा अपने प्रभाव से कोपायस्व इस बालक का पालन करो। समाहितः अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सावधानी से अनुवाद तथा तात्पर्य है डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अतएव हे नंद महाराज निष्कर्ष यह है कि आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण ऐश्वर्य नाम यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है। आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करें। तात्पर्य इस श्लोक में नारायण समह शब्द महत्वपूर्ण है। नारायण की कोई समता नहीं, वे असम ऊर्ध्व हैं। कोई न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। शास्त्र में कहा गया है यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्र आदि देवते समत्वेन विक्षेत स पाषंडी भवेद्रुवम। जो कोई नारायण की समता बड़े से बड़े देवता यहाँ तक कि शिवजी या ब्रह्मा जी से भी करता है वह पाषंडी है। नारायण की समता कोई नहीं कर सकता, फिर भी गर्ग मुनि ने सम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वे कृष्ण को भगवान बतलाना चाह रहे थे। जो नंद महाराज के पुत्र बन चुके थे वे नंद महाराज के मन में इस बात पर जोर देना चाहते थे कि आपका आराध्य देव नारायण आप पर इतना प्रसन्न है कि उसने आपके लिए ऐसा पुत्र भेजा है जो गुणों में लगभग उन्हीं के समान है, इसलिए आप उसका नाम उससे मिलता जुलता जैसे मुकुंद या मधुसूदन रख सकते हैं। किंतु सदा याद रखें कि जब भी आप कोई उत्तम कार्य करना चाहेंगे तो अनेक बाधाएं आएंगी। अतएव आप इस बालक का पालन तथा रक्षा बड़ी ही सावधानी से करें। यदि आप इस बालक की रक्षा सावधानी से करेंगे तो जिस तरह नारायण सदैव आपकी रक्षा करते हैं उसी तरह यह बालक नारायण जैसा ही होगा। गर्ग मुनि ने यह भी इंगित किया कि यद्यपि यह बालक नारायण के समान ही गुणवान है किंतु यह रास बिहारी के रूप में नारायण से भी बढ़कर आनंद भोगेगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है लक्ष्मी सहस्त्र सत समर्पे सेव्यमानम, उनकी सेवा अनेक गोपियां करेंगी जो लक्ष्मी के ही समान होंगी। ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखावितंश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अभी खुल जाएगा ना ऑल्टर तो फिर उजाला हो जाएगा, ये वाले चालू कर दो। अभी तो ऑल्टर खुल जाएगा तो उजाला हो जाएगा। जो भक्त भगवान के तेज को देख सकेंगे वो तेज को देखेंगे, नहीं तो फिर बल्ब है बट उजाला होगा। हरे कृष्णा। तो यहां 18 नंबर श्लोक में परपट नहीं है लेकिन कुछ अच्छा तात्पर्य में बताया गया, इसलिए थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। यहां पे गर्ग मुनि कहते हैं कि देवताओं के पक्ष में भगवान सदैव रहते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र के जो दुश्मन है असुरगण उन्हीं को क्षति पहुंचती है। भगवान पहुंचाना न भी चाहें तो पहुंच जाती है क्योंकि वो लोग धर्म का पालन नहीं करते। और देवता और भक्त जो है वो धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए उनकी रक्षा होती है। तो यहां पे कहते हैं कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है वो अत्यंत भाग्यशाली है। प्रभुपाद जी बहुत बार इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से जुड़ा है वो अत्यंत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग भगवान से स्नेह रखते हैं, अतएव कंस के संगी तथा असुर, अब प्रभुपाद जी ब्रैकेट में डालते हैं, या आंतरिक शत्रु तथा इंद्रियों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। कंस और जो दूसरे उनके संगी जितने भी शत्रु आए वो तो मार दिए गए। अब कोई बोलेगा अभी तो ऐसे शत्रु है नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे ब्रैकेट में डाल दिए या अतिरिक्त या आंतरिक शत्रु तथा इंद्रियां। तो इंद्रियां तो है कितनी? 10। ये 10 इंद्रियां हमारी शत्रु हैं। और क्या है शत्रु? आंतरिक शत्रु और कौन सा है? मन। यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भगवान में अनुरक्त है, जो भगवान से अत्याधिक स्नेह रखता है, उसे कभी भी उसके आंतरिक शत्रु तथा इंद्रियां परास्त नहीं कर सकते। देखिए कितना महत्वपूर्ण यहां पे इस अनुवाद में बताया गया, इस श्लोक में बताया गया है। तो अगर हम भी, तो इससे तो लॉजिक ये निकलता है कि अगर आप भगवान में अनुरक्त हैं और अत्याधिक स्नेह रखते हैं तो इंद्रियों से परास्त नहीं होंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर आप इंद्रियों से परास्त हो रहे हैं मतलब भगवान में अभी अनुरक्त नहीं है, स्नेह नहीं है, है ना? लॉजिक सॉल्व किया ना, रीजनिंग ऐसे ही होता है ना। तो मतलब अगर मैं इंद्रियों से परास्त हो रहा हूं, मन से परास्त हो रहा हूं, तो क्या करना चाहिए? मन को वश में करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि मन को वश में करना एक बद्ध जीव के लिए ऑलमोस्ट असंभव है। गीता में भी भगवान कहते हैं क्या, कैसे मन में वश, मन को वश में करना है, लेकिन प्रोसेस क्या है? अगर इंद्रियों से और मन से हम परास्त हो गए तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान में अनुरक्ति और स्नेह बढ़ाना चाहिए। मन से डील मत करिए, आप भगवान से डीलिंग रखिए, है ना, मन को भगवान संभाल लेंगे। हम क्यों मन से भिड़ेंगे? इतने जन्मों से तो उसकी गुलामी करते आए, अभी प्रयास कर रहे हैं, जब तो क्या करता, हमको पछाड़ देता है। जय श्री राधा रास बिहारी भगवान की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। ये मनमोहन कृष्ण है जो मन को भी मोह लेंगे, है ना। भगवान को मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो मन को भी मोह लेते हैं। तो इस लॉजिक से हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा स्नेह बढ़े, ऐसा कुछ करना चाहिए। अब स्नेह कैसे कैसे बढ़ता है? सबसे पहले तो किसी व्यक्ति के बारे में आपको स्नेह बढ़ाना है तो उसके बारे में सुनना पड़ता है, इसीलिए श्रवणम। दूसरा, उसके गुणों को अब सुन लिए हैं तो दूसरों को बताएंगे, क्योंकि थोड़ा स्नेह जागृत हुआ, यहाँ पे अत्यधिक स्नेह बताया गया है, तो थोड़ा स्नेह जागृत हुआ फिर हम जाके बताएंगे कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान जो हैं कितने अच्छे हैं। वो जाके दूसरों को जब गुणों का वर्णन करेंगे तो स्नेह और बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे लिमिट नहीं रहना है, क्योंकि इस संसार में भी, भौतिक संसार में हम देखते हैं किसी के साथ स्नेह कब बढ़ता है, जब उस व्यक्ति के साथ हम समय बिताते हैं। तो अगर हम समय बिताएंगे भागवत के साथ, अगर हम समय बिताएंगे हरिनाम के साथ, अगर हम समय बिताएंगे भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हुए, तो क्या होगा, भगवान के साथ स्नेह बढ़ता जाएगा। ग्रेजुअल प्रोसेस है, घाई नहीं करना चाहिए। कुछ भक्त आते हैं, प्रभु जी मेरा नहीं हो रहा है, मेरा रिलेशन भक्तों से नहीं बन रहा है, मेरा रिलेशन भगवान से नहीं बन रहा है, तो थोड़ा आराम से रहो। तो ज्यादा जल्दी 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 करने के चक्कर में क्या होता है, उनका मन उत्तेजित रहता है हमेशा, फिर वो परेशान हो जाते हैं। स्लो मतलब ये नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक एक पल बड़ा कीमती है, तो धैर्य मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आराम से करेंगे, है ना, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म। भगवान कहते हैं ना, योगी मतलब कैसा होता है, छठे अध्याय में कहते हैं गीता के, योगी मतलब जो दृढ़ है, इस जन्म नहीं मिला तो अगले जन्म प्राप्त करूंगा। तो हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ये तीन चीजों को बताते हैं, उत्साह निश्चय धैर्यार्थ। अभी दशहरा आ रहा है, भगवान राम जब माता सीता का अपहरण हुआ, भगवान राम ने वापस कब प्राप्त किया माता सीता को, लगभग 10 महीने हुए थे, है ना। तो पहले तो ढूंढना चालू करते हैं, फिर कौन मिलता है सबसे पहले, जटायु मिलता है, फिर जटायु से बात करके आगे बढ़ते हैं, फिर मतंग ऋषि के आश्रम जाते हैं, शबरी का उद्धार करते हैं, फिर वहां से पता पड़ता है किष्किंधा जाना है, वहाँ हनुमान जी मिलते हैं, फिर हनुमान जी लेकर जाते हैं ऋषि मुख पर्वत की ओर, वहां पे सुग्रीव मिलते हैं, फिर सुग्रीव का कार्य करते हैं भगवान, बाली को मारते हैं, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक करके फिर चतुर्मास चालू हो जाता है, फिर ऋषि मुख पर्वत पे आ जाते हैं भगवान, क्योंकि सुग्रीव कहता है प्रभु अभी तो पूरा बारिश ही बारिश है, चतुर्मास है, थोड़ा जाने दीजिए, फिर ढूंढेंगे। भगवान 4 महीने बैठे हैं, सोचिए, धैर्य देखिए भगवान का। उसके बाद भी जाते हैं, सीता माता का पता लगता है, सेना लेके जाते हैं समुंदर के सामने, फिर धैर्य दिखाते हैं 3 दिन, फिर पुल बनती है उसमें भी धैर्य लगा, कहीं पे भी भगवान राम सिखा रहे हैं ये तीनों चीजें साथ में जानी चाहिए। कोई भी कार्य करने में उत्साह कम हो गया तो वो कार्य असंभव है करना, कोई भी कार्य में, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, अगर उत्साह कम हुआ वो कार्य नहीं हो सकता। और उत्साह होगा, इनिशियल एंथुजियाज्म, लेकिन अगर दृढ़ता नहीं होगी तो कार्य पे हम टिक नहीं पाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं, ट्रेन में बैठते हैं माँ बाप के साथ, बॉम्बे से जाना है उनको दिल्ली जाना है, ट्रेन थोड़ा चलती है फिर रुक जाती है कहीं पे जाके, तो बच्चे विचलित हो जाते हैं, तो उनमें उनका चंचलता ज़्यादा है, वो दृढ़ नहीं है, तो हमको दृढ़ होना पड़ेगा, ठीक है, फिर धैर्य रखना पड़ेगा। ट्रेन रुक गई इसका मतलब नहीं चलो उतर गए, थोड़ा शहर घूम के आते, तब तक ट्रेन निकल जाएगी। इस्कॉन प्रभुपाद जी क्या बोले, पानी का जहाज है, थोड़ा मैं तैर के आता हूँ तो क्या मिलेगा फिर समंदर में बाहर, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मिलेगा शार्क। तो इसीलिए भगवान राम फिर धैर्य रख रहे हैं, फिर रावण के साथ युद्ध होता है, रावण की आर्मी को पहले मारते हैं, फिर भी भगवान रावण को बार बार मौका देते हैं। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तीनों जब होगा तो क्या होता है, स्नेह बढ़ता है हमारा। तो भक्ति करने में, श्रवण कीर्तन करने में उत्साह भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से तो नहीं मिलने वाला है हर चीज। आप अगर अंधेरी से दादर जाएंगे कितना लगता है लोकल का टिकट, 10 रुपया, 10 रुपये का टिकट है, लेकिन चर्चगेट जाएंगे तो 20 रुपये का टिकट है। तो दूर जाएंगे तो टिकट महंगा होता है ना, फिर फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो और महंगा हो जाएगा, 100-150 रुपये लग जाएगा, चर्च गेट तक पता नहीं 200 लग जाता होगा। लेकिन अगर आप अपना गाड़ी लेके जाएंगे तो और ज्यादा महंगा लगेगा, पेट्रोल लगेगा इतना दूर जाने का 50 किलोमीटर। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करते हो, आप हेलीकॉप्टर हायर करते हो, हेलीकॉप्टर में जाते हो तो और ज्यादा पैसा लगेगा। अब आपको वैकुंठ जाना है, वो भी अपना पर्सनल विमान आएगा आपका, वहां पहुंचने के बाद वो दे दिया जाएगा, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। तो संसार का नियम है, आप इतना दूर जाना चाहते हो और वो भी चार्टर प्लेन, अपना प्राइवेट प्लेन से जाना चाहते हो, वो भी पेट्रोल नहीं भराओगे उसमें, और घूमते हुए सारे लोगों से जाओगे, कीमत नहीं भरेंगे तो ये कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद वही बोलते हैं, यू हैव टू पे द प्राइस। और क्या है वो, यही उत्साह, निश्चय, धैर्य, लगे रहो। फिर आज के श्लोक में बताते हैं, गर्ग मुनि नंद बाबा से कहते हैं कि आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। हालांकि हमारे आचार्य बताते हैं कि नारायण जिनके समान है, कृष्ण नारायण के समान नहीं है, कृष्ण तो नारायण के भी स्रोत है एक हिसाब से, नारायण कृष्ण के समान है। प्रभुपाद जी परपट में देखते हैं, ये तो स्वयं नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह रास बिहारी के रूप में नारायण से भी बढ़कर आनंद भोगेगा। ये कृष्ण है और इनके दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम तथा यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है, इसलिए इस बालक को क्या करो, सावधानी से सेवा करो। अब देखिए परपट में पहले तो प्रभुपाद कहते हैं कि नारायण का पहले कंपैरिजन करते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे गीता में या प्रभुपाद के लेक्चर में, प्रभुपाद ने भगवान को एक कैटेगरी में रखे, एक वर्ण में रखे, देवताओं को अलग रखा, मनुष्य को अलग रखा, जीव जंतुओं को अलग रखा। बहुत कम प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन कम जगह पे कहते हैं कि कृष्ण जो है वो नारायण के भी स्रोत है, कहते हैं लेकिन कम जगह पे। अभी तो पहले दुनिया में ये तो स्थापित हो जाए कि भगवान कौन है, ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना, कि उसमें भी अलग अलग लेवल हैं। तो यहां पे कहते हैं कि ब्रह्मा या रुद्र, शिव जी या अन्य देवता भी भगवान के समान नहीं है, वो भगवान के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? असम मूर्ध्व, असम है और अऊर्ध्व, मतलब ना उनसे कोई बढ़ के है ना कोई उनके समान है। तो पहले प्रभुपाद जी उस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जितने भी लेक्चर हैं प्रभुपाद ने ये एस्टैब्लिश किया है कि भगवान जो है वो भगवान है और कोई भी देवता उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और हम 10 नाम अपराध में पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु का नाम वो भगवान सॉरी शिव जी और ब्रह्मा जी का नाम जो भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है, उनसे स्वतंत्र भी नहीं है, उनके समान भी नहीं है। चलो ठीक है, ब्रह्मा जी शिव जी अन्य देवता भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन वो भी कुछ हैं, लेकिन इस नाम अपराध में क्या कि वो स्वतंत्र भी नहीं है। ये संबंध समझना चाहिए। एक वैज्ञानिक ने कहा भगवान ने सृष्टि बनाई हम मानते हैं, लेकिन फिर सृष्टि इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि भगवान इसको पालन नहीं कर पाए इसलिए भाग गए छोड़ के। तो कैसे लोग ऐसी बातें करते हैं जो सोचते हैं कि हम भी भगवान के बराबर हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया तो सोचते हैं भगवान भी कंफ्यूज हो गया। पहले तो भगवान कंफ्यूज होंगे नहीं, मान लो हुआ भी तो भगवान को क्या करना है, एक सांस ही तो अंदर लेना है, सारा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। कई बार आप कुछ बनाते हैं, कुछ बनाने का कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आता तो पेपर उठा के डस्टबिन में नया बनाएंगे। तो भगवान की शक्ति का भाव ही किधर है। तो देवता का भी ऐसा पोजिशन नहीं है कि तो भगवान से अभिन्न रहें या स्वतंत्र रहें या उनके समान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे वो कहते हैं, लेकिन जो वह कहता है वो क्या है? वह पाषंडी है, सपाषंडी भवे ध्रुवम, वो निश्चित ही पाषंडी है जो भगवान के बराबर किसी और को मानता है। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप लोग को नहीं पता होगा भक्तों को क्या करना है। तो एक भक्त मिला, चैंटिंग करता था, अभी छोड़ दिया। मैं नवरात्रि करूं क्या, मेरे जीवन में बहुत दुख है प्रभु जी, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, क्या करूं? मैं बोला हरे कृष्णा जप करो, गीता पढ़ो। बोले मेरे पास तो पैसा भी नहीं। मैं बोला वो तो मैं कर नहीं सकता कुछ, मैं तो जेब से निकाल के दे नहीं सकता, जेब खाली हमारा, लेकिन हरे कृष्णा जप करो, भगवद गीता पढ़ो, ये जो कर्म का फल मिल रहा है इसको काटने में आपको शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक कट जाए। तो मैं नवरात्रि करूं क्या? मैं बोला करो नवरात्रि, सवेरे से शाम तक उपवास रखो, शाम को पानी पियो और खाना है तो थोड़ा खाओ, हाँ, और प्रसाद खाने के पहले दुर्गा के मंदिर में जाओ और बोलो कि माता, हाँ, जो आपके पिताजी हैं जिनकी आप भक्ति कर रही हो मेरे को भी उनकी भक्ति में लगा दो, है ना, फिर नवरात्रि ठीक है। संबंध क्लियर होना चाहिए। तो कई बार भक्तों में भी, इसलिए प्रभुपाद के शास्त्रों को पढ़ो, क्योंकि जो बुक्स नहीं पढ़ेगा प्रभुपाद के उसको संबंध नहीं समझ में आएगा। इसलिए कई बार भक्त जाते हैं इधर उधर, भटक जाते हैं, हरे कृष्णा भी कर देंगे, बीच में 2-4 माला भी डाल देंगे दूसरी। किसने किया था ऐसा? छठे स्कंद में विश्वरूप ने देवताओं को मंत्र डालते डालते मामा का भी मंत्र डाल दिया। क्या हुआ फिर? इंद्र ने तलवार निकाला, तीनों सर काट दिए। तो भगवान को ये पसंद नहीं है और जरूरत नहीं है, भगवान को पसंद नहीं और हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारे कर्मों से बढ़ के हमको दे सके। वो देवता खुद कर्मों के बंधन में है। आप भी इंद्र बन सकते हो अगर बनना चाहो तो, कोई भी देवता आप बन सकते हो, शिव जी नहीं बन सकते, वो इटर्नल है। तो वो तो खुद कर्मों के बंधन में है। इंद्र का टाइम फिक्स है, इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पोजीशन है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो पोजीशन रहता है, लोग बदलते रहते हैं, वैसे इंद्र एक पोजीशन है, लोग बदलते रहते हैं वहां पे। ऑलरेडी अगला इंद्र बुक है, बलि महाराज। तो वो तो खुद कर्मों के बंधन में जो हैं, वो आपको क्या छुड़ाएंगे और क्या मदद करेंगे, ये चीज आगे आएगा गोवर्धन पूजा के समय, भगवान इसको क्लियर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देवताओं के प्रति अपराध करें। हम नासिक जाते हैं तो त्रिंबकेश्वर भी जाते हैं, शिवजी तो परम वैष्णव है। तो आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप बस लेके पुष्कर चले गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, अब पुष्कर गए हो तो ब्रह्मा जी का दर्शन करो। हमारे आचार्य के, हमारे ब्रह्म मधो गौड़ीय संप्रदाय के मेन आचार्य हैं वो। लेकिन संबंध क्लियर होना चाहिए कि उनका भगवान से क्या संबंध है। अगर उनको हम भगवान मान के प्रणाम करते हैं तो अपराध हो जाता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि शिवजी को प्रणाम करते हो और शिवजी को भगवान कहते हो, वो शिवजी का इंसल्ट होता है। शिव का इंसल्ट है कैसे, और इसलिए वो क्रोधित हो जाएंगे। ये इंसल्ट कैसे हो गया किसी को भगवान बोलना? आप रास्ता चल के किसी को बोलोगे और मुख्यमंत्री जी कैसे है, तो वो मुख्यमंत्री नहीं, उसको पता है, तो वो क्या बोलेगा, मेरा टांग खींच रहा है। तो जो भगवान नहीं है और उस व्यक्ति को पता है मैं भगवान नहीं हूं, उसको ये बोलना कि आप भगवान हो, उनका इंसल्ट हो गया। इसीलिए जो लोग भक्त नहीं हैं, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, दुर्गा के पास भी जाते हैं, तो भी ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे देखो रावण ने क्या प्राप्त किया, हिरण्यकश्यपु ने क्या प्राप्त किया, तो कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे आजकल के लोग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। रावण को पता था शिव जी जो है वो भगवान नहीं है, मिला उनको इतना कुछ। तो ये देवताओं का संबंध जो है वो हमारा संबंध, और देवताओं का सबका संबंध जो है वो भगवान के साथ क्लियर, पहला। फिर कहते हैं आपके आराध्य देव नारायण आपसे इतने प्रसन्न है कि उन्होंने ये पुत्र भेजा है। ये तो अभी छुपाना है ना गर्ग मुनि को, वो तो बता नहीं सकते। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे, हम ब्रज में थे तो महाराज का लेक्चर चल रहा था, तो यही पास टाइम आया था। बोलते हैं कि बताते बताते होता है ना फ्लो फ्लो में उत्साहित हो गए ना, गर्ग मुनि देख रहे हैं यहाँ पे श्याम सुंदर भगवान है, तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पे। जैसे ही बोला नारायण तो महाराज बोलते हैं कृष्ण ने तुरंत आंखों से ऐसे घूर के देखा गर्ग मुनि को, तो फिर पलट दिए कि नारायण के समान है, नारायण ने भेजा है, क्योंकि नहीं तो लीला भंग हो जाएगी। भगवान जिस लीला के लिए है वो लीला चला जाएगा। तो उनके समान गुण में है, इसीलिए आप उनका नाम मुकुंद या मधुसूदन रख सकते हैं। अब देखिए, अब भगवान आपके पुत्र बन के आए हैं, सृष्टि के महानायक आपके पुत्र बन के आए हैं, तो क्या सोचेंगे नंद बाबा यशोदा माता? देखो भगवान हमारा बेटा बन गया, उनको पता नहीं, लेकिन मान लीजिए भगवान आपका बेटा बन गया, तो फिर क्या है, आपको जिंदगी में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ आनी है? नहीं। फिर फायदा क्या हुआ भगवान हमारा बेटा बना तो, है कि नहीं? अरे किसी का बेटा सरपंच बन जाए तो उसको माँ बाप को तकलीफ होना चाहिए क्या? पोजीशन हो गया, कम से कम मटेरियली एक्सटर्नली तो उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए। किसी का बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए तो भगवान आप, किसी का बच्चा भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान आपका बेटा बन के आ गए। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, किंतु सदा याद रखें जब भी आप कोई उत्तम कार्य करना चाहेंगे तो अनेक बाधाएं आएंगी। ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तो भगवान पुत्र बने, तो फिर क्यों अनेक बाधाएं क्यों आएंगी? फिर जब भगवान आ गए तो अनेक बाधाएं क्यों आनी चाहिए? सोचिए। अब इसका उपाय अगले लाइन में देते हैं। अतएव आप इस बालक का पालन तथा रक्षा बड़ी ही सावधानी से करें। उससे क्या होगा? यदि आप इस बालक की रक्षा सावधानी के साथ करेंगे तो जिस तरह नारायण सदैव आपकी रक्षा करते हैं, उसी तरह बालक नारायण जैसा ही होगा, मतलब आपकी रक्षा करेगा। ये तीन स्टेटमेंट हैं जुड़े हुए। आप कोई भी उत्तम कार्य करना चाहेंगे तो अनेक बाधाएं आएंगी नंद बाबा के लिए, और हम सोचते हैं मैं एक माला कर लिया तो अभी मैं उड़ के चला जाऊंगा वैकुंठ, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इंद्रदुम्न महाराज एक बार बता रहे थे, यहीं जुहू में नित्यानंद त्रयोदशी के दिन लेक्चर दे रहे थे 5-6 साल पहले। तो उन्होंने कहा, जब वो यूरोप में थे और संकीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी मंदिर में थे, सब लोग भक्त लोग जाते थे सवेरे सवेरे अपना चैंटिंग करके संकीर्तन करने। तो इंद्रदुम्न महाराज, आपको पता है उनका हाइट, लंबे कद है उनका, चौड़ा शरीर, तो बुक बेच रहे थे। तब तो इतना चौड़ा नहीं था शरीर, कीर्तन कर रहे थे। एक यूरोपियन बूढ़ी माता जी आई, हाँ, और महाराज का नाक को ऐसा पकड़ा, ऐसा हिलाया। तब ब्रह्मचारी थे, नाक को पकड़ा, क्या कर रहे हो ये सब? हाँ, आप सोचिए कितना इंसल्ट होगा आपको कोई ऐसा करेगा। तो बड़े दुखी हुए थे और आए और प्रभुपाद को बताने लगे, इतना तकलीफ है संकीर्तन में। और प्रभुपाद के सामने टेबल था, प्रभुपाद ने क्या किया, अपना मुट्ठी उठाया और ऐसा जोर से टेबल पे बजाया। When did I say संकीर्तन इज ईजी? प्रभुपाद बोलते हैं, कब मैंने कहा कि संकीर्तन करना आसान होगा? प्रभुपाद कभी नहीं कहे कि भक्ति में आ जाओगे तो सब आसान हो जाएगा। देखिए कहीं पे है, क्योंकि प्रारब्ध तो हमको लेना ही है। हाँ, बाकी का बहुत फैसिलिटी मिलेगा, मतलब आप वैकुंठ जाने के जो मार्ग पे आ जाओगे। अभी तक संसार में भटक, अभी तक दिशा ही नहीं थी, अब दिशा मिल गई, लेकिन मार्ग में कठिनाई तो जरूर आएगी। तो कोई भी साधक साधना कर रहा है, आज ही सवेरे प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे थे, प्रभुपाद बता रहे थे हमारा उद्देश्य रागानुगा भक्ति है, लेकिन बिना साधना भक्ति किए कोई भी राग मार्ग में नहीं आ सकता। और प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं, राइप मैंगो एंड कच्चा मैंगो, ग्रीन मैंगो। आम है हमारे पास, तो आम के पेड़ है, तो आप देखिए उस पर आम लगते हैं, मार्च अप्रैल में लगना चालू हो जाता है, लेकिन वो हरा रहता है, कच्चा रहता है, बट फिर भी आम है ना। एक महीना और रुक जाइए, वो आम पक जाएगा, वही आम है, नाम तो फिर भी आम है लेकिन टेस्ट बढ़ गया। तो साधना भक्ति करते करते हम क्या हो जाएंगे, हम कच्चे भक्त हैं। इसी मार्ग पे करते करते पेड़ से अलग कर दो कच्चा आम को, देखो पकता है क्या? नहीं पकेगा, वो सब आर्टिफिशियल जो पकाते हैं कार्बाइड डाल के, ये डाल के, टेस्ट नहीं आता, वहीं रहेगा। तो पेड़ से ही पोषण मिलेगा, जड़ से। तो हम कृष्ण से जुड़े रहेंगे परंपरा के द्वारा, कृष्ण पेड़ की जड़ हैं, तो ये पूरा भक्ति वृक्ष है ना। और इस्कॉन जो है, इस भक्ति चैतन्य वृक्ष का 43वां नंबर शाखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितमृत, पहली शाखा नित्यानंद है, इस्कॉन जो है वो 43वीं शाखा है। अब उस शाखा से जुड़े हो तो क्या हो रहा है, जड़ से पोषण आ रहा है, शाखाओं से उपशाखाएं, और फिर उस आम को पोषण मिल रहा है। तो हम आ गए हैं, भक्ति प्रारंभ कर दिया है, साधना भक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन फर्क है, फायदा मिल रहा है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने से ये कष्टों को आप सह सकोगे। अभी देखिए, कुछ दिन पहले रात को बिजली चमकी थी बहुत, हाँ बहुत भयावह बिजली चमका था, रात को 12 बजे से सवेरे 2-2.5 बजे तक चला था। मैं अगले दिन पूछा कि मेरा तो नींद खुला, मैं भक्तों से पूछा, भक्त बोले हम भी जाग गए थे, हाँ वो राम नाम लेने लग गया, कोई नरसिंह नाम लेने लग गया, सब अलग अलग भक्त बता रहे थे। सोचो बाहर वालों का क्या होगा, ना तो राम है ना तो नरसिंह है उनके पास। ये कष्ट तो क्योंकि हम संसार में हैं, अब एक रोड पे चल रहे हैं, हाँ भारतीय सड़कों पे चल रहे हैं, जो गांव की या पुरानी सड़कें हैं, तो क्या होगा, आप ऑटो में जाएंगे तो भी खड्डे में आपको जब गाड़ी जाएगा तो तकलीफ होगा, आप BMW में जाएंगे तो भी खड्डे में तकलीफ होगा, लेकिन BMW में कम होगा, लेकिन तकलीफ तो होगा क्योंकि रोड ही खराब है। ये दुखालय है तो दुख तो आएंगे ही आएंगे। सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, हम सोच बैठे हैं कि अब 16 माला कर रहा हूं, दीक्षित हो गया, अब तो सब आनंद ही आनंद है। फिर उसमें क्या होता है, वो जो स्पिरिट है ना, जो वॉरियर का स्पिरिट है, जो योद्धा का स्पिरिट है, वो खो जाता है। फिर तकलीफ आता है, आप परेशान हो जाते हो। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं एक योद्धा हूं, अब मेरे पास घोड़ा भी मिल गया, हथियार भी मिल गए, दैवी अस्त्र भी मिल गए, अब मैं और अच्छे से लड़ूंगा। ऐसा ही होता है ना, भगवान ने अर्जुन को जो 12 साल का वनवास था उसमें बोला फायदा उठा लो इसका, 1 साल का उसको वो मिला था, क्योंकि युधिष्ठिर और द्रौपदी महारानी बैठे थे तो अर्जुन घुस गया था रूम में, और नियम यह था कोई भाई के साथ अगर द्रौपदी है दूसरा भाई आ नहीं सकता। अर्जुन को हथियार लेने थे तो भगवान ने अरेंजमेंट कराया, अब उसके बाद क्या था, दंड क्या था, 1 साल और वनवास छोड़ के भी और कहीं चले जाओ। तो भगवान ने कहा अर्जुन को यही तो मौका है, इसका फायदा उठाओ और जाओ दैवी अस्त्र हासिल करो, युद्ध की तैयारी करना है। तो वहीं पे पशुपात लिए, फिर उसके बाद तो स्वर्गलोक भी चले गए। तो ये सब दैवी अस्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन बैठ थोड़ी गया, बैठ गया था, इतने सारे अस्त्र थे अर्जुन के पास। मुझे नहीं पता कि पशुपात अस्त्र किसी के पास था क्या, कहीं वर्णन नहीं है, अर्जुन ने चलाया भी नहीं, ऐसे सुना नहीं है कि चलाना पड़ा। हालांकि नारायण अस्त्र चला था, विष्णु अस्त्र चला था युद्ध में, इतने बड़े बड़े अस्त्र चलाए गए थे। विष्णु अस्त्र को तो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया था, तो अस्त्र जो आ रहा था वो भगवान, विष्णु अस्त्र भगवान को क्या करेगा, तो माला बन गया, गले में आ गया। तो इतना अस्त्र मिलने के बाद अर्जुन क्या बोलता, बैठ जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी हमको संग मिला वैष्णव का, साधना का मार्ग मिला, शास्त्र मिले, हरिनाम मिला, तो अब तो क्या करना है, अब तो और उत्साह से लड़ना है। प्रभुपाद कहे एक भक्त को, बोले शेर से लड़ोगे, शेर को मार भी दोगे तो भी कुछ पंजे तो तुम्हारे चेहरे पे भी पड़ेंगे ना। ये तब हुआ था जब मिस्टर प्राइस ने ठग दिया था हमारे भक्तों को न्यूयॉर्क में $5,000 का। प्रभुपाद बोले केस करो, भक्तों ने बोला पैसा जाएगा, बोले जाने दो, छोड़ना नहीं। फिर भी कुछ $4,000 आ गए थे वापस। प्रभुपाद कहीं पे भी हो योद्धा जैसे ही रहे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, ये सोचना चाहिए कि अब मैं इक्विप्ड हूं, अब मेरे पास हथियार हैं, अब मैं लड़ सकता हूं। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, अर्जुन विचलित हो गया, थोड़ा डर गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, हे कृष्ण आप तो महाबाहु हैं, आप भक्तों को क्या करते हो, अभय प्रदान करते हो, अरे मेरे को भी अभय प्रदान कीजिए, समझ में नहीं आ रहा क्या है। हालांकि अर्जुन के पास इससे बड़े बड़े अस्त्र थे, लेकिन हमारे सीखने के लिए भगवान कहते हैं, तो भगवान से पूछ रहा है। फिर भगवान कहते हैं ये द्रोणी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो, उसको वापस लेने नहीं आता। क्यों नहीं आता? सिखाया जा रहा था, सो गया होगा, इसीलिए क्लास में सोना नहीं चाहिए। उसको वापस लेनी है ना, तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को मिलाओ फिर वापस ले लो। उसके बाद अर्जुन ने सबसे पहले कृष्ण की शरण ली, हथियार था लेकिन कृष्ण की शरण ली, क्या करूं, कृष्ण ने प्लान बताया। उसके बाद पहले तो भगवान कृष्ण का गुणगान किया अर्जुन ने, फिर समस्या सामने रखी, फिर तीसरा भगवान से सुना, और चौथा भगवान का परिक्रमा किया तीन बार, और फिर एक्शन लिया। ये पांच स्टेप याद रहने चाहिए। आप प्रभुपाद के जीवन में देखो, ये पांचों स्टेप मिलेंगे आपको। तो बहुत बार ये बंबई को लेके इतना संघर्ष हुआ, प्रभुपाद भगवान के शरण में। तो क्या किया, ये पांच स्टेप क्या है? सबसे पहले समस्या आई तो हमारे सामने भी समस्या आएगी, सबसे पहले भगवान के पास आओ, या मंदिर में नहीं है कहीं है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का गुणगान करो, फिर भगवान के सामने अपनी समस्या रखो। अब आप बोलोगे कि प्रभु जी वहां तो कृष्ण थे तो अर्जुन को बोल दिए। तो एक वो फोटोग्राफ बहुत फेमस है, चलता रहता है इस व्हाट्सएप पे हर जगह। एक भक्त ऐसे बादलों की तरफ देखता है, हे भगवान मुझसे बात करो, और दूसरी इमेज में ऐसे भगवत गीता, एक हाथ निकलता है बादलों से, उसमें भगवत गीता होती है, लो बात कर रहा हूं पढ़ो। तो गाप किया है ना बात भगवान ने, 525 श्लोक में तो बात किया है, सुनो। तो फिर थर्ड स्टेप हमारे लिए क्या होना चाहिए? शास्त्र पढ़ना, उसमें मिलेगा हमको आंसर। कभी भी हम विचलित हों तो यही आपका रक्षा कर सकता है, भगवान का ही नहीं अपितु इसमें आचार्यों की भी दिव्य वाणी है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और फिर भगवान को ही केंद्र रख के अपने जीवन का डिसीजन लो और आगे बढ़ो। तो ये मत सोचो कि दुख नहीं आएंगे जीवन में, ये सोच के हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली हम लोग कमजोर हो जाएंगे। आप जाके आर्मी का ट्रेनिंग कभी पता कीजिएगा। एक बार जयपता का महाराज बता रहे थे, जो प्लेन्स होते हैं ना हवाई जहाज, उनके पायलट का ट्रेनिंग कैसे होता है। अभी तो सिम्युलेटर वगैरह सब आ गया है, पहले नहीं था सिम्युलेटर, अभी तो ऐसी मशीन आ गई यहाँ पे, आप बैठ के पूरा सीख सकते हो, उसी में एग्जाम होता है, पास हो गए जाओ प्लेन उड़ाओ, क्योंकि सेम सिम्युलेशन कर दिया, सेम है वो मशीन में आप चला रहे हो। कार सीखनी है, सीखनी है वो, आजकल सिम्युलेटर घर घर में बच्चे यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहां सेवा कर रहे हैं, ऊपर भी सेवा ही करना है, यहां सिमुलेशन चल रहा है। पहले क्या होता था, महाराज बता रहे थे कि जो पायलट को ट्रेन किया जाता था उसको प्लेन में बैठा देते थे, आंख बंद कर देते थे उसकी पट्टी से, काला पट्टी बांध देते थे उसकी आंख, और उड़ाएगा कैसे। क्या होता है, आज भी जो ऊपर वातावरण है वो जैसे दिखता है वो सब होता नहीं है, रिफ्रैक्शन। आपको दिखेगा कि एक प्लेन सामने से आ रहा है लेकिन वो एक्चुअली आपके बाजू से निकल जाएगा। ये एटमॉस्फेयर ऐसा भगवान ने बनाया है। तो पट्टी क्यों बांध दी? क्योंकि आपको देख के नहीं चलाना है, आपको सुन के चलाना है। जो एटीआर होगा, एटीसी होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो आपको बताएगा क्या करना है। तो ये उदाहरण देके महाराज समझा रहे थे कि कैसे भक्ति में देख के नहीं करना है, सुन के करना है। नवोविधा भक्ति में दर्शनम कहीं पे नहीं है, श्रवणम है। और प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन पढ़िए उस परपट में 7523, श्रवणम को कितना एक्सप्लेन करते हैं। तो सुन के हमको करना है, देख के नहीं करना है, श्रवण इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जब हम ये मान लेते हैं, तो हम आर्मी का ट्रेनिंग का बात कर रहे थे, आर्मी का ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता कि बैठो थोड़ा गोलगप्पा खाओ, थोड़ा मालपुआ खाओ, उसके ऊपर स्वीट राइस डालो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से आराम करो, ऐसे 6 महीना, 1 साल, 2 साल निकल गया, अभी जाओ युद्ध करने। और वहां पे क्या होगा युद्ध में, ये बंदूक लेके जाओ, कुछ होगा नहीं, खाली मैदान ही रहता है, कुछ नहीं होगा। अब आप उसको, आर्मी ऑफिसर अपनी सेना को भेजता है युद्ध पे, युद्ध चालू है, बोलते कुछ नहीं होगा, कोई होगा भी नहीं, तुम ही लोग बस होके देखना, मैदान खाली है, वापस आ जाना। तो इसमें क्या होता है, ये पहुंच जाएंगे वहां पे सैनिक, वो देखेंगे तो अपोजिशन आर्मी इतनी बड़ी खड़ी है, उनकी उनका तो 56 इंच का छाती है, हमारा 56 इंच का तोंद निकला हुआ है, खिला पिला के आराम कराए, क्या करेगा, बंदूक चलाना सीखा नहीं, और उनको साइकोलॉजिकली पूरा तोड़ दिया कि वहां कुछ नहीं होगा, जाओ विजयी भव। और विजयी भव क्यों बोलता जब कुछ होगा नहीं, अरे तो भी तो आ तो जाओगे ना, ये तो आएंगे नहीं सब, कोई नहीं वापस आने वाला है। तो ऐसे ही अगर हम कृष्ण भावना में आए हैं और अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनर को भी समझना चाहिए और ट्रेनी को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसार में तकलीफ नहीं होगी, और ट्रेनिंग ही गलत है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले माया से भिड़ रहे हो, प्रभुपाद ने बोला हमने माया को युद्ध, माया से युद्ध छेड़ा है। जब प्रभुपाद जी का हेल्थ खराब हुआ था 1967 में, बोले मैंने माया के खिलाफ विश्व विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया है, तो वो छोड़ेगी। यहीं पे जूह में एक भक्त आके प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ये मंदिर में कितनी माया है, कितना पॉलिटिक्स है। बोलते हैं मंदिर में बहुत माया है। प्रभुपाद बोले इसमें आश्चर्य क्या है कि मंदिर में माया है, आश्चर्य तो ये है कि माया के जगत में हमने मंदिर खड़ा कर दिया है, ये आश्चर्य है ना। आप अगर जाके रशिया में मंदिर खड़ा कर दोगे, प्रयास चल रहा है, चाइना में करेंगे, देखो कोई भक्त जाके करे तो अच्छा है, पहुंचते ही आपका वेलकम किया जाएगा वहां पे। और उससे अच्छा आपको जगह पे, प्रभुपाद जी क्या बोले, जो अरब में जाके जो मुसलमानों को प्रचार करेगा उसका चरण धूलि मैं अपने सर पे लूंगा। ऐसा ही एक क्षेत्र है चाइना के दक्षिण में जिसको कहते हैं उत्तर कोरिया, वहां पे जाके प्रचार कीजिए। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को एक ईमेल आया था कि कोई प्रीचर भेजिए उत्तर कोरिया। महाराज ने गोपाल कृष्ण महाराज को बोला कि वेणु माधव प्रभु को भेज दो, एक सेमिनार करके आ जाएगा। तो कोई घुस नहीं सकता उधर, ऐसा ही माया का जगत है, कोई नहीं घुस सकता। प्रभुपाद ने मंदिर स्थापित कर दिया, आप सोचिए प्रभुपाद का शक्ति, तो माया भी तो अटैक करेगा। तो इसलिए कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं हमारे जीवन में तकलीफ नहीं होगा, अब तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में आ गया हूं, सारी संसार के दुख पीछे छोड़ के आ गया हूं। नहीं, अपने कर्मों को लाए हो कि नहीं लाए हो ना, तो भगवान दूसरे रूप में निकालेंगे उसको, क्योंकि कर्म का फल फिक्स नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस फिक्स होता है। उसका एक्सपीरियंस फिक्स होता है। कोई ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया, आपके जीवन में एक पत्नी या दो पत्नी, 3-4 बच्चे थे, जॉब में जाना था, बिजनेस में संकट था, वो सब लिखा था, अब आप आ गए तो यहां आपको दूसरे रूप में दिया जाएगा। यहां पे बताया, लेकिन रक्षा कैसे होगी वो भी बताया है। इस बालक का पालन करो, इसकी रक्षा बड़ी सावधानी से करो। मत, हम तो पालन नहीं कर सकते ना, ये तो सबके पालन करता है, हम कैसे इनका पालन करेंगे, लेकिन सेवा करो। विग्रह के रूप में शास्त्रों में कहा गया, विग्रह कैसा होता है, असहाय होता है। असहाय मतलब भगवान को कपड़ा मत पहनाओ, कपड़ा ही नहीं पहन पाएंगे अपना। विग्रह के रूप में भगवान आते हैं तो अपने भक्त पे पूरे असहाय हो जाते हैं। देखो मदन गोपाल को, सनातन गोस्वामी को बोले अरे बाबा तुम ऐसा आटा का गोली खिला देता है, थोड़ा तो नमक डालो। नहीं, फिर भगवान ने इनडायरेक्ट अरेंजमेंट किया, ऐसा नहीं उठ के चले गए और नमक खरीद के ला लिए। तो विग्रह जो होते हैं वो उस ऐसा प्रकट होते हैं कि वो असहाय हैं, तो उनका सेवा करना भी पालन करने जैसा ही है। तो भगवान राधा रास बिहारी का हम सेवा करें तो फिर क्या होगा, जिस तरह नारायण सदैव आपकी रक्षा करता है उसी तरह यह बालक नारायण के जैसा होगा, मतलब वो भी रक्षा करेंगे। तो संसार में दुख आएगा उससे भागो मत, भगवान की शरण लो, भगवान की सेवा करते रहो। अच्छा, तो प्रभु जी अगर दुख आया और तुरंत भगवान का नाम लिया, भगवान की सेवा किया तो तुरंत दुख चला जाएगा? नहीं, भगवान अपनी लीलाओं से क्या सिखा रहे हैं। भगवान के माता पिता को 11 साल जेल में रहना पड़ा, 8 साल जो भी है, उसके बाद तो घर में थे। भगवान राम आए, उनकी पत्नी को भी कोई हर के लेके गया। ठीक है, सब भगवान की लीला है, प्लान है, लेकिन हमको क्या समझा रहे हैं। जब भगवान, जब माता सीता को लेके गया रावण, तो भगवान लताओं से, पताओं से, पत्थरों से, दिशाओं से, हवाओं से, सबसे पूछ रहे हैं कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त होता है उसकी गति ये होती है। ये आचार्य कहते हैं, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा, भगवान तो हमें सिखाने के लिए लीला कर रहे, लेकिन बता रहे हैं कि ये संसार ऐसा ही है। अब कोई बोलता है प्रभु जी ठीक है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति दुख देता ना तो समझ में आता, अपना ही भक्त जिस पे पूरा विश्वास था। आओ फिर सतयुग से थोड़ा कलयुग तक यात्रा करते हैं, प्रहलाद महाराज को कौन दुख दे पाया था, ऐसे तो कोई दे नहीं पाया, लेकिन तकलीफ देने का कोशिश किसने किया, बाप ने। भगवान राम को वनवास किसने जाने के लिए बोला, मां ने, सौतेली मां ने। है कि नहीं, दुख कहां से मिला, वहीं से मिला। सुग्रीव को दुख कहां से हुआ था, वाली से। भगवान कृष्ण के बड़े 6 भाई जो थे उनको किसने मारा, मामा ने। देवकी को जेल में किसने डाला, भाई ने। उग्रसेन जी को जेल में किसने डाल दिया, बेटे ने। बाहर वाले तो कभी तकलीफ दे भी नहीं सकते ना। आप पुस्तक वितरण करने जाओगे, आज हमारा बस पार्टी जा रहा है, कोई व्यक्ति भड़क जाएगा आपके ऊपर, 2-4 लगा भी देगा, आपको वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, करुणा आएगी, अरे बेचारा संसार में फंसा है, प्रभु मैंने तो माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो, कृपा करो उसके ऊपर। लेकिन वही चीज अगर हमारा जान पहचान वाला करे तो बोल दे कोई, सिर्फ मारना तो छोड़ो, कोई बोल दे तो कैसे देखो, क्योंकि अहंकार वहीं टूटता है। और अब जब अहंकार टूटेगा तभी शुद्धिकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। पांडवों को देखो, बाहर वाला कोई अर्जुन को हिम्मत है, किसी का हिम्मत है अर्जुन को कुछ, भीम को कुछ बोल सके, लेकिन अर्जुन और भीम के सामने उनका पत्नी का तिरस्कार किया गया। अर्जुन अकेला ब्रह्मांड को खा जाए इतना शक्ति रखता था, देवताओं को परास्त कर चुका था, लेकिन वही पांचों पांडव कृष्ण जिनके सखा हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं कृष्ण तो आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपके भाई हैं, आपके घर में रहते हैं। लेकिन क्या हुआ पांडवों के साथ, द्रौपदी को कृष्ण सखा का क्या हुआ, तो ये मत सोचिए। तो जहां पे आप हो, इर्द गिर्द जो आपके है, भगवान वहीं से आपको शुद्धिकरण करेंगे, दूसरे को लाने की जरूरत नहीं है। कृष्णा इज रिसोर्सफुल पर्सन बाबा, ही सुप्रीम लॉर्ड, और बहुत रिसोर्सफुल हैं। आप जहां पे बैठे हो वहीं बाजू में से कर देंगे किसी को, चलो भाई इसको शुद्धि करो, बेचारे को पता भी नहीं पड़ेगा वो शुद्धि कर रहा है दूसरे का। और ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी को कष्ट दे रहे हैं, बोल रहा प्रभु जी ऐसा क्यों करते हो, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं आपका शुद्धिकरण करने के लिए। तो फिर 2-3 निमित्त भगवान भेज देंगे। तो कहने का मतलब है 4 दीवारी में ही शुद्धिकरण करना चाहते हैं भगवान, करने दो ना। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ऑपरेशन होता है ना, चौराहे पे थोड़ी ऑपरेशन होगा। तो सहो और शुद्धिकरण होने दो, जितना जल्दी हो जाएगा, एक बार निकल जाएगा अंदर ये जो भरा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, शरीर में पस भर जाता है, वो एक बार निकल गया तो निकल गया, उसके लिए थोड़ा तकलीफ है, पैसा भी दोगे तकलीफ भी लोगे। तब हमको क्या करते रहना है, भगवान का पालन मतलब भगवान की सेवा करते रहना है। तो हमने देखा कैसे गर्ग मुनि बताते हैं नंद बाबा को कि आपका जो पुत्र है नारायण के समान है। और इसके पहले हमने देखा कि 18वें श्लोक में यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे एक अच्छा वाक्य है, देवताओं का पक्ष हमेशा कृष्ण लेते हैं, देवता या फिर जो भगवान के अत्यधिक, जो भगवान में अत्यधिक स्नेह रखते हैं उनका पक्ष लेते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि तकलीफ तो तभी भी आएगी लेकिन भगवान आपका पक्ष लेंगे जरूर। देवताओं को बहुत तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कि उनके लोक में सब कुछ, असुर लोक वहीं पे है ना, सोचिए। तो यहां पे तकलीफ से भागिए मत, योद्धा बनिए और लड़िए। और कैसा योद्धा बनना है, एक बार एक डिवोटी था, हम बैंगलोर में जब जॉब करते थे तो हम लोग बेस में रहते थे, तो एक डिवोटी आया था चंडीगढ़ से, कुछ माला जब करता था तो बोला और अभी तो पढ़ाई नहीं है क्या कर रहे हो, बोला ब्रो जी मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। बोला क्यों, बोले माया से लड़ना है ना, मार्शल आर्ट सीख के माया से लड़ेगा। तो ऐसा योद्धा नहीं बनना है, हमको भगवान की शरण लेनी है, हरिनाम जप करना। योद्धा का स्पिरिट होने का मतलब है हार नहीं मानेगा, संघर्ष करेगा लेकिन हार नहीं मानेगा, तकलीफ सहेगा दुख सहेगा, शत्रु द्वारा पराजित भी हो जाएगा, धोबी पछाड़ भी दे देगा हमको हमारा मन, लेकिन फिर खड़े हो जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। देखो ना, मन हार न मानने वाला है ना आप हार मानो, अल्टीमेटली कौन जीतेगा, जो शाश्वत होगा, मन तो भौतिक है तो आप ही जीतेंगे। मैच का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है कि जीत आपकी होगी, बस लगे रहो, छोड़ के मत भागो, हिम्मत मत हारो। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भक्त कुछ कमेंट करेंगे, कृष्ण भजन प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे, थोड़ा कुछ ऐड करना चाहेंगे, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।